बांस का झुरमुट क्या चीज है और कैसे आग लगती है और सारा बांस जल कर राख हो जाता है, हम लोगों ने देखा है इन दृश्यों को। इसलिए भागवत गांव में रहने वाले आसानी से समझ सकते हैं। जितना उदाहरण आया है लगभग 80% से अधिक गाँव का उदाहरण आया है, तो बांस जलते हुए कोई देखा ही नहीं, तो इस उदाहरण को क्या समझेगा। तो बांस के झुरमुट में आग लगती है, प्राय गर्मी के दिन में लोग जान बुझ करके भी आग लगा देते हैं, तो बांस जलकर राख हो जाए। बड़े बड़े बांसों में आग नहीं लगाई जाती है, बांस का झुरमुट एक अलग चीज, बहुत छोटे छोटे उसमें शाखाएं निकली रहती है, कुछ सूखा कुछ हरा इस तरह से पत्ता रहता है, उसमें आग लगा दिया जलकर साफ हो जाता। लेकिन जब वर्षा का दिन आता है तो पुनः बांस के अंकुर सूखने लगते, इसका अर्थ हुआ कि आत्यंतिक नाश नहीं हुआ झुरमुट का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महत्व अघम अपिस्तंति, बहुत बड़ा पाप हो गया है, अनेक पाप, उसको इन उपायों से खत्म किया जा सकता है, जैसे आग के द्वारा बांस के झुरमुट नष्ट हो जाता। तो उदाहरण इस बात को बता रहा है कि परंतु वर्षा काल में पुनः जैसे बांस उग आते हैं, वैसे मनुष्य तो पाप खत्म कर देता है उपायों से, लेकिन जब उसे विषय का संयोग मिलता है तो उसकी वासना पुनः उभर जाती है, फिर वही पाप करने लगता है। तभी तक उसकी चेतना बनी रहती है जब तक उसके सामने कुछ इंद्रियों के विषय न आ जाए। जैसे आंखों के सामने मान लीजिए कुछ जब तक सुंदर रूप नहीं आया है तब तक तो उसका चित्त है शांत है, लेकिन जब ही उसके आंखों के सामने सुंदर रूप आया तो उसके मन में उस रूप को भोगने की लालसा हो जाती है। जब ही बात सुनता है मान लीजिए ऐसे शांत है चित्त सुख है, लेकिन कोई आकर के गाली दे दिया उसको तो तुरंत मन विचित्र हो जाता है, बदला लेना चाहता है। ये तो आतंकिक शुद्धि हुई नहीं, आतंकिक शुद्धि नहीं हुई, आग लगी बांस के झुरमुट में लेकिन उसके मूल को जला नहीं पाए। इसी तरह से इन उपायों से सप्ताह ब्रह्मचर्य जाना समेन का दमेन का त्यागेन सत्य सौचा धर्म जमेन नियमेन का, इसके द्वारा पाप तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन पापों की जो वासना है चित्त में, पाप का जो संस्कार है वो नहीं जल पाता है, फिर अनुकूल अवसर आने पर वो पाप करने लगता है। ऐसा इतिहास में अनेक उदाहरण, बहुत बहुत उदाहरण, जैसे विश्वामित्र मुनि के विषय में कहा जाता है वो भी बहुत तपस्या किए, बहुत त्याग किए, तप करते थे, लेकिन मेनका को देखने पर उनके हृदय में पूर्व संस्कार जागृत हुए। और 60 बरस के ध्यान के बाद एक लड़की को जन्म देकर वो भी भाग गए, वो स्वर्ग में चली गई मेनका, और वे भी अपना आसन गोल किए भाग गए, क्योंकि जानते थे कि उनकी बेइज्जती होगी उसके द्वारा। उस बच्ची का पालन किया पक्षियों ने, जैसे शकुंतला पालन। इससे सिद्ध होता है कि त्याग ब्रह्मचर्य तपस्या इन सबसे आत्यंतिक शुद्धि नहीं होती, यदि प्रायश्चित की अपेक्षा इनसे ज्यादा शुद्धि होती है, परंतु आत्यंतिक शुद्धि नहीं होती। जब यह उदाहरण दिया सुखदेव गोस्वामी ने तो महाराज परीक्षित कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने ऐसे कहा श्रोता के सिरों धुनन से सिर हिलाने से पता लग गया कि ये पसंद नहीं कर रहा, और बताना चाहिए पहले कर्म बताए, कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, अब भक्ति योग बता रहे हैं। वो समझ गए कि हमारा शिष्य उत्तीर्ण है परीक्षा। किसी भी भक्त को बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए वास्तव में किसी बात को ठीक ठीक समझने में, तब उसे रियल बात दी जाती है, नहीं तो गुरु कभी कभी थर्ड क्लास की चीज दे करके ही फुसला देता है, ठीक है ठीक पड़ेगा। क्या करें, उसकी उसी लायक होता है तो क्या करें। देखता है कि इसी काम में रुचि है तो हाँ ठीक है करो, यही बेस्ट डिवोशनल सर्विस है, तुम यही करते रहो। लेकिन शिष्य को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए किसी बात को पकड़ने में, समझने में। सबसे परीक्षित महाराज एक महान भक्त थे। वास्तविक बात ये थी कि वो चाहते थे कि भक्ति की महिमा इस सभा में कही जाए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब कर्म की महिमा कहा, ज्ञान की महिमा कहा, तो परीक्षित महाराज ने स्वीकार नहीं किया। तब भी बोलते कि केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेना निहारमिव भास्करः। अब फाइनल जो असली उत्तर था दे रहे केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केचित वासुदेव परायण, लेकिन केचित विरले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो श्री कृष्ण के परायण होते हैं, श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। उनके जीवन में पाप नष्ट करने की चिंता नहीं होती है, चिंता ये होती है कि हम श्री कृष्ण को पा जाएं। श्री कृष्ण ही हमारे परम आश्रय हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, सब कुछ हैं। तो ऐसे लोगों को वासुदेव परायण करते हैं। वासुदेव का तो वसुदेव का पुत्र, नंद बाबा का या वसुदेव जी का पुत्र। कहते श्री कृष्ण में जो पर अयन है, अयन का आश्रय, श्री कृष्ण ही जिसके जीवन के परम लक्ष्य है, वासुदेव सर्वम जी, अथवा श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय है, श्री कृष्ण पर ही जो पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है, ऐसा ऐसे लोग केवल या भक्तिया, जो कर्म और ज्ञान का आचरण नहीं करते, केवल भक्ति करते। केवला भक्ति का मतलब है जिसमें ज्ञान कर्मा धनावृतम, ज्ञान और कर्म मिश्रित नहीं है। उनका जो कर्म है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, इसको भक्ति कहते हैं। तो केवल भक्ति के द्वारा अघम धनवंत कार्ष्णेन पापों को पूरा पूरा कृतज्ञता नष्ट कर देते हैं, जैसे भास्कर निहारा सूर्य कोहरा को नष्ट कर देते। आप लोगों ने देखा होगा रात में कोहरा छा जाता है और कुछ दिन में भी रहता है, लेकिन सूर्य उगता है और सूर्य की किरणों से कोहरा दूर हो जाता है। तो जब एक दिन में कोहरा दूर हो जाता है, कुहासा जिसे पाता, तो फिर दिन में वो दोबारा नहीं हो पाता, नष्ट हो जाता है। तो पूरा पूरा पाप साफ हो जाता है। भक्ति और पाप, तो पाप को कुहरा के समान कहा गया, कुहासा के समान, निहार कहते हैं संस्कृत में, और भक्ति सूर्य के समान, इतना पावरफुल। सूर्य के आगे कुहरा क्या है, कुछ नहीं है। ऐसा कहा गया है कि भगवान के एक नाम में पाप काटने की जितनी शक्ति है, उतना पाप जीवन में कोई पाप की कर ही नहीं सकता। जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य में अंधकार नष्ट करने की जितनी शक्ति है, क्या एक व्यक्ति उतना अंधकार बना सकता है, रखता है शक्ति अंधकार बनाने की। सूर्य उगे और अंधकार को बचाने के लिए पाकिट में भरने लगे, झोला में भरने लगे, घर में भरने लगे, कितना भरेगा। सूर्य उगते ही सारे जगत का अंधकार दूर कर देता है। तो भगवान के नाम में यह शक्ति है, क्या कोई पाप की पाप करेगा। एक नाम जितना पाप काट सकता है, उतना पाप दुनिया के लोग मिलकर कर ही नहीं सकते। इसीलिए सूर्य की से और निहारम से उपमा दी गई। निहार है पृथ्वी के तल पर ही रहता है, बहुत ऊंचे नहीं रहता है। ऐसा हम लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये निहार बहुत आकाश में छाया हुआ है, बहुत ऊपर नहीं होता है, केवल हमारे आंखों को ढका रहता है। इसके परे सूर्य का बहुत प्रकाश फैला रहता है, जो भास्कर रहता है, बहुत प्रकाश सूर्य रहता है, लेकिन पृथ्वी पर छाए हुए कोहरे को भी वो पूरा पूरा नष्ट कर देता है। ये सूर्य की शक्ति है। इसी तरह भगवान की भक्ति है, नामोच्चारण आदि, अघम कार्ष्णेन धुन्वन्ति, पूरा पूरा वे अपने पापों को नष्ट कर जाते हैं केवल भक्ति से। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया, पाप क्या हमको घेरेगा, यदि भगवान का नाम जिह्वा पर रहे और इस पृथ्वी को मांग लीजिए, इस शरीर को पृथ्वी मांग लीजिए, अगर हमारे जिह्वा के उदयाचल पर सूर्य है तो यहाँ इस पृथ्वी की देह पर प्रकाश देना कौन बड़ी बात है, वो क्या कुहरा रह सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध ऋषियों के बीच में सुखदेव गोस्वामी भक्ति की महिमा बता रहे हैं और परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का वास्तविक उत्तर दे रहे हैं। केवल या भक्त, केवल भक्ति, केवल भक्ति का मतलब होता है उसमें कोई प्रायश्चित वाला कर्म सांगते नहीं है, कोई जरूरत नहीं, और न तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधन है उसको करते हैं, ये भी नहीं करते, केवल भक्ति करते हैं। जैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, ये सब केवल भक्ति। कुछ लोग यहाँ केचित शब्द का अर्थ करते हैं, चंद्र स्वामीता जी कहते हैं बिरला, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो भक्ति की महिमा जानते हैं। लड़ कुछ नहीं करते, भक्ति करते हैं उसी से उनके साथ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सूर्य वास्तव में उगता है तो वो निहार को दूर करने के लिए नहीं उगता है, क्योंकि निहार तो पृथ्वी के केवल तल पर रहता है और सूर्य का प्रकाश तो अनंत अनंत योजन तक फैलता है, तो कोटि कोटि योजन तक फैलता है। वास्तव में सूर्य क्यों उगता है, सूर्य लोगों को कर्म शक्ति प्रदान करने के लिए उगता है, लोग काम कर सकें, जा सकें, घूम सकें, ये कर्म करें, वो कर्म करें, वो अंधकार से लड़ने के लिए या निहार से लड़ने के लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य अभी उगता नहीं, उसके पहले ही अंधकार खत्म हो जाता है, लड़ेगा क्या। हमने देखा, अभी मैं कथा कहा अफ्रीका में प्रसंग को, वहाँ के भक्तों ने इस पर नाटक किया, जमदूत और विष्णु दूत का संवाद, ऐसे श्रद्धा थी, नाटक किया, लेकिन पूरा पूरा पढ़े नहीं थे कि क्या क्या बात हुई। मैं भी देख रहा था उस नाटक को लास्ट दिन, जो था जमराज के दूत आए अजामिल को लेने के लिए, वो नारायण ने कहा तब तक विष्णु दूत आ जाए, तो विष्णु दूत और जमदूत लड़ने लगे देर तक। उसने कहा कि ये तो केवल बात विवाद हुआ है, तो हाथा पाई करने लगे, और जमदूत सब अफ्रीका के लड़के बने थे जो भारत के लड़कों से बलवान थे, तो हमने तो कहा ये तो अनर्थ हो रहा है। तब मैं उनसे भीतर से कहलवाया कि कहो कि जमराज यदि भाग जाए ये तो खिली आवे, ये तो खिली आवे, तब वो जाकर भागे। तो इस प्रकार से वास्तव में भगवान सूर्य जो उगते हैं तो अंधकार से लड़ने के लिए नहीं उगते, क्या अंधकार उनके सामने टिकेगा। आप देखते हैं सूर्य जब भी सामने नहीं होते हैं 6 बजे लगभग, अभी भीतर रहते हैं पृथ्वी के क्षितिज के भीतर, तब तक अंधकार खत्म हो जाता है। सामने आने पर कैसे अंधकार टिक सकता है, इसी प्रकार से कोहरा भी है, कोहरा दूर से बहुत दूर रहता है, बहुत दूर पृथ्वी का आश्रय करके रहता है, लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणें जैसे कोहरा को नष्ट कर देती है, वैसे हमारे मन में, वाणी में और शरीर में जो पाप हो गया है, पाप का संस्कार भीतर जो जम गया है उसको भी पूरा पूरा खत्म कर देता है। जो सूर्य कोहरा को नष्ट करता है तो कोहरा का मूल बचा नहीं रहता, सारा समाप्त हो रहा है। इसी तरह पाप करने की भावना वासना समाप्त हो जाती है, पहले का किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है, और जब पाप का संस्कार समाप्त हो जाता है तो आगे पाप होता ही नहीं, जिस तरह से शुद्धि होती है भक्ति के द्वारा, यही वास्तव में सिद्धांत है। इसको और भी सिद्धांत में शुद्ध गुणी कहते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा फिर मानसिक रूप से, तब प्रायश्चित की बात क्यों लोग करते हैं? जब भगवान का नाम, भगवान की भक्ति ही समर्थ है जीव को शुद्ध करने में, तो फिर क्यों प्रायश्चित की बात करते हैं लोग? तो इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न तथा भगवान राजन हुई तब तप आदि यथा कृष्णार्थी तब प्राण तत्पुरुष मुख्य भया। मैंने ये प्रश्न किया जा सकता है, सभा में बड़े बड़े ऋषि थे, वो कहते कैसे आप प्रायश्चित को उड़ा दिए, या ये काम नहीं करते हैं? अगर काम नहीं करते तो मनु महाराज पागल हो गए हैं, क्यों ऐसा लिख रहे? ब्राह्मण की हत्या करने वाला यह प्रायश्चित करे, सोना की चोरी करने वाला यह प्रायश्चित करे, ऐसे करे, वह क्यों लिखा गया? तो सुखदेव को संत स्वीकार करते कहते हैं कि वास्तव में वे पाप को काटते हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन न तथा भगवान राजन सूर्य तप आदि हे राजन तप आदि सप्ताह ब्रह्मचर्य धारण समय न समय न्यागे न सत्य शौचा धन जमीन नियमेन कर, इससे पापी की शुद्धि होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होती है, लेकिन न तथा भगवान राजन सूर्य तप आदि हे राजन तप आदि ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा पापी शुद्ध होता है, लेकिन वैसा शुद्ध नहीं होता है यथा कृष्णार्थी तक प्राण तत्पुरुष निश्चय। जैसा कि कृष्ण में अपने इंद्रियों को अर्पित कर देने वाला व्यक्ति पवित्र होता है, वैसे पवित्र पाप आदि करने से नहीं होता है। कृष्णार्थी प्राण, प्राण का इंद्रिय होता है, जिसने अपने आंख को कृष्ण के रूप में लगाया है, जिसने जिह्वा को लगाया है, हाथ को लगाया है, ऐसा व्यक्ति जितना पवित्र होता है कम्प्लीट है, इतना तप आदि से शुद्ध नहीं होता। ये प्रश्न होगा कि कृष्णार्थी कोई कैसे बनेगा, कृष्णार्थी प्राण कैसे बनेगा, कैसे कोई कृष्ण में अपने इंद्रियों को मन को अर्पित कर सकता है? इसका उपाय बताते हैं, तप पुरुष निश्चय हो जाए। तप पुरुष का अर्थ कृष्ण पुरुष, कृष्ण भक्त के सेवा से कृष्ण में मन लग जाता है। तप पुरुष निश्चय हो जाए कृष्णार्थी प्राण भवती, बहुत सुंदर उपदेश है। किसी भी काल में किसी भी देश में वास्तव में कोई चाहता है कि कृष्ण में हमारा मन पूरा पूरा लग जाए, हमारी सारी इंद्रियां कृष्ण में लग जाए, तो उसे कृष्ण भक्त की सेवा करनी चाहिए। तत्पुरुष नीचे वया नीचरा नीचे वया, इस तरह से उसकी शुद्धि होती है। और इसके बाद कहते हैं कि सभी तीनों हयम बनता, सभी तीनों हयम लोके पंथा हेमो अकुतो भय सुशीला साधव जत्र नारायण पर आएगा। फाइनल करते हुए सुखदेव वो तन कह रहे हैं, सभी तीनों ही अयम पंथा लोक, इस लोक में वास्तव में कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है, तो यह भक्ति योग ही सभृतीन पंथ है। सभृतीन का अर्थ है उचित समुचित। जीव कृष्ण का नित्य दास है, अतः उसे शुरू में ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना उसमें आवे, कृष्ण से प्रेम करना सीखे। ज्ञान योग में और कर्म योग में ये बात नहीं आ पाती, कर्म में बात नहीं आती, और भक्ति में तो स्वाभाविक ही समर्पण की भावना आती है। इसलिए यही सबसे सुंदर मार्ग है, समीची में सभी सीमा अयम लोक पंथा। क्यों? क्षेमा, इसी में जीव का हित है। कैसे जीव का हित इसमें है? क्योंकि अकुतो भय, इस पंथ पर कोई भय नहीं है, इस पंथ पर भय नहीं है। और कर्म मार्ग में ज्ञान मार्ग में भय है। क्या भय है? इंद्रियों का फिर से विषय आवेश का भय है, दूसरे दूसरे मार्ग पर। और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, कहते हैं सुशीला साधव जत्र नारायण परायण, इस पंथ पर नारायण परायणा भगवान नारायण के भक्त चलते हैं जो सुशील होते हैं और साधु होते हैं। सुशील का अर्थ होता है कृपालव, सुशील कृपालव जो कृपा करते हैं, नहीं रखते हैं किसी के प्रति, और साधव जिनमें ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होती है। संस्कृत का शब्द मत्सरता, जिनके भीतर किसी के उत्कर्ष को देख करके दाह नहीं उत्पन्न होता, द्वेष नहीं होता, उनको निर्मत्सर या साधु कहते हैं। तो इस पंथ पर जो चलते हैं भगवान के भक्त, वे सुसाधु होते हैं और निर्मत्सर होते हैं, जो कृपालु होते हैं और मत्सरता से हीन होते हैं। कि दूसरे मार्ग में क्या है, कर्म में जितने लोग होते हैं सब मत्सर से ग्रस्त रहते हैं। जितने लोग कर्म करने वाले, यज्ञ करने वाले, दान देने वाले, तप करने वाले, जितने लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करें, हम स्वर्ग में स्थान पाए, हम ऐसा पाए। जैसे लोक में आप देखते हैं किसी भी विषय में कॉम्पिटिशन होता है, कंपटीशन है ना, तो कर्म मार्ग में कंपटीशन बहुत मत पड़ता है, हमसे आगे न बढ़ जाए, इंद्र न बन जाए, ये न हो जाए। इस पृथ्वी पर जो लोग कर्म करके और स्वर्ग गए, स्वर्ग में जाने के बाद भी उनके भीतर से द्वेष गया नहीं है। यदि यहाँ कोई साधु महात्मा या राजा तप करने लगता है, यज्ञ करने लगता है, तो देवता लोग चाहते हैं कि वो यज्ञ पूरा न कर पाए, नहीं तो आएगा तो यहाँ बेहतर स्थान पाएगा हमसे। इसलिए कोई अप्सरा भेज देते हैं, चाहे घोड़ा चुरा लेते हैं, जैसे इंद्र ने पृथ्वी महाराज को घोड़ा चुरा लेते, वो चाहते हैं विघ्न में करना, तो उनको साधु नहीं कहेंगे। कर्म में हमेशा होड़ लगी रहती है, ईर्ष्या लगी रहती है, उनसे आगे न जाने पाए, आगे न जाने पाए। लेकिन इस भक्ति पंथ पर कभी भी ईर्ष्या नहीं होती है। यदि मान लीजिए हम 16 माला जपते हैं और दूसरा भक्त यदि 32 जप रहा है, बहुत उसे सुखी होता है, बहुत अच्छा है, भजन कर रहा है, कर रहा है, ये नहीं होता है अरे वो क्यों माला कर रहा है ना। इस पंथ पर चलने वाले में ईर्ष्या नहीं है। प्रत्येक भक्त चाहता है दूसरा ज्यादा जप करे, दूसरा ज्यादा जप करे, मंगल आरती अटेंड करे, है ना। कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि ऐसे भक्त हैं जो भोर में दूसरे भक्त को जगाने लगते हैं। जो भक्त हैं सोए, तो सोए थे भक्त कहता उठो 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 उठो, 3:30 बज गया, उठो उठो जाओ जाओ मंगला सुन जाओ, और हो सकता है कि जगाने वाला न जाए। इसका मतलब उसको कोई द्वेष नहीं है, मत्सरता नहीं है, वो दूसरे को जगाकर मंगलारती में भेज रहा है, भले स्वयं न जाए, तो ये तो उदारता है ना। ये तो महानता हो, ऐसी महानता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो भी अगर हो रही है तो महानता है बात तो। लेकिन कर्म मार्ग में कोई भी ऐसा नहीं है वो कहेगा कि आप बड़ा बड़ा जग कीजिए और हम नहीं करेंगे, नहीं, वो सोचेगा हम करें, हम देवता बने, हम बड़ा भोगे। स्कूल में पढ़ाई लिखाई है, कॉलेज में है, कंपटीशन में कोई एक लड़का थोड़े सोचता है कि नहीं तुम ही ले लो डिग्री, हम नहीं लेंगे। कर्म मार्ग में ईर्ष्या है, होड़ है, तो जिस पंथ पर होड़ है, ईर्ष्या है, इसमें चल करके आप क्या करेंगे। हमेशा जो चलने वाले हैं वही आपको पीछे धकेलेंगे। तो कर्म मार्ग में ये दोष है बहुत बड़ा कि वे उन्हें ईर्ष्या, वो बढ़ने नहीं देंगे आपको। ऐसे पंथ पर क्यों कोई चलेगा। अभी मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं जाना हो, पता लग जाए कि इस पंथ पर सब हमारे द्रोही जा रहे हैं, हमारे कार को रोकेंगे, चाहे पैदल जो हमको मारेंगे पीटेंगे, तो हम क्यों जाएंगे। अच्छा, ज्ञान मार्ग में क्या दोष है। ज्ञान मार्ग में जैसे इसमें कहा गया सुशीला, तो सुशीला का अर्थ सुशीला स्वामी करते हैं कृपालव, कृपालु। भक्ति पंथ पर चलने वाले सब कृपालु होते हैं। कोई भक्त गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है, तो उसको वे हेल्प करने वाले हैं, सब तरह से सहायता करने वाले हैं। जैसे हमने देखा था एक बार भागवत यहाँ हुआ था, तो कुछ कृपालु जन भागवत खरीद खरीद करके बांटे, ऐसे कृपा हो। और सहायता हमेशा रहती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है कि वहां पर कृपा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप अगर किसी पर कृपा करते हैं तो उसको कह सकते हैं ये माया है। उस मार्ग में तो प्रत्येक आदमी ब्रह्म है तो कृपा क्या करेगा, तो अपना अलग अलग ध्यान करता है। ज्ञान मार्ग में ये है तो उस पंथ पर आप चलेंगे तो कोई बातचीत करने वाला नहीं, सब तो अपने अपने ध्यान में रहते हैं। पता ही नहीं लगता है वो अपने मन में क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, अपनी कुटिया में बैठ करके अपने आश्रम में बैठ करके कोई बात ही ठीक नहीं है तो उस पंथ पर चल कर क्या करेंगे। और बात भी करेंगे तो कह देगा तुम भी ब्रह्म हो भगवान ध्यान करो और मैं भी ब्रह्म भगवान हूँ ध्यान करो। भक्ति मार्ग में तो ये है नहीं, यहाँ तो सहायता न मत्सरता का भय है न असहायता का भय है। यहाँ तो झुंड के झुंड भक्त इस पंथ पर चलते हैं और सहायता करते हैं। भक्त आगे से जा रहा है, पचास सैकड़ों भक्त पीछे से जाते हैं, है न परस्पर सहयोग कर रहे हैं। किसी ने भागवत को स्पॉन्सर किया, किसी ने विचार किया तो सैकड़ों लोग सुन रहे हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसे सैकड़ों लोग एक साथ कोई बात नहीं करते, सबका ध्यान अलग अलग होता है। बल्कि समाज में बैठने में सोचते हैं कि हम जब ये सोच हो गए हम ऐसी जगह नहीं रहेंगे, एकांत में हिमालय में जाएंगे कहीं जाएंगे, उनमें कृपा नहीं होती। कृपा क्या होगी, वो अपनी स्त्री को भी छोड़ करके ज्ञान मार्ग में जाते, बच्चे को भी छोड़ करके जाते। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई जरूरी नहीं है। तो भागवत सुनने के लिए पुरुष भी आ रहा है, पत्नी भी आई है, बच्चे भी आते हैं, इसलिए यह जो मार्ग है यही ठीक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सदृश तीनों हयम लोके पंथा खेलो अकुतो भया, अकुतो भया सुशीला साधो जत्र नारायण परायण। इसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर भगवान कृष्ण के सुशील कृपालु और मत्सरहीन भक्त चलते हैं। तो सहायता करेंगे सब तरह से हमारी, क्यों नहीं इसी पंथ पर चला जाए, क्यों ऐसे असहाय और ईर्ष्या वाले लोगों के साथ चला जाए। इसलिए यही मार्ग ठीक है। ये देखिए कितना सुंदर निर्णय दे रहे हैं। इधर के लोग तो खैर कुछ लोग कार से चलते हैं, बस से चलते हैं और चलते हैं, जहाँ पैदल चलना होता है तो जरूर लोग विचार करते हैं कि लंबा रास्ता है तो कौन साथी मिलेंगे चलने के लिए, कैसे मिलेंगे। अगर ये पता लग जाए कि इस पंथ पर चलने वाले सब कंपटीशन में चल रहे हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे या कुआं में धकेल देंगे, और ये पता लग जाए कि इस पंथ पर ऐसे लोग चल रहे हैं जो किसी से बात ही नहीं करते, मौनी होते हैं, न भोजन का पूछेंगे न पानी का पूछेंगे, केवल अपने ध्यान में रहेंगे, तो उनको क्या सहायता की आशा की जाएगी। हम लोगों का जो भक्ति मार्ग है इसमें सहायता है और कृपा। जैसे गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं तो लाखों लाखों लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकांत में ध्यान करो। कीर्तन हो रहा है तो हजारों हजारों लोग एक साथ करते हैं, भागवत हो रहा है तो एक साथ हजारों लोग सुनते हैं कहते हैं, हजारों लोग एक साथ प्रसाद पाते हैं हरि बोल कह करके। जो भी हो यह सहायता का मार्ग है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सभी तीनों यम लोग के पंथा क्षेमो अकुतो भया, इसमें भय नहीं है। बहुत लोग इस पर चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अधिकांश बड़े बड़े लोग इसी मार्ग पर चले, पहले के महान पुरुष ऋषि जन सबका चला हुआ मार्ग है, और इसीलिए कंप्लीट व्यवस्था है। बीच बीच में पड़ाव है, भोजनालय है, सराय है, सब रुकने का सहायता है, सब तरह इसी पर चलना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जब ये प्रवचन कर रहे थे तो उनके उस सभा में बहुत बहुत मत के लोग बैठे थे, प्राय दुनिया से सभी ऋषि मुनि आए थे, तो कुछ न कुछ मत का डिफर तो था, कुछ न कुछ ढेर था। परंतु सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर प्रवचन कर रहे हैं कि सबको इस भक्ति मार्ग में लाना चाहिए, यही ठीक पंथ है। सब ही अर्थ केवल यही पंथ ठीक है। जिस पंथ पर भगवान नारायण के सुशील और साधु भक्त चलते हैं। शुरू शुरू में श्रीमद् भागवत में साधु शब्द का अर्थ किया गया है निर्मत्स, और यह श्रीमद् भागवतम निर्मत्सर लोगों के लिए, निर्मत्सर पुरुषों के धर्म का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोचित कई सवत्त परमो निर्मत्सराणाम कथा। और अब बता रहे हैं कि प्रायश्चित यदि खूब किया जाए बड़ा बड़ा, तब भी किसी पापी की पूर्व शुद्धि नहीं कर पाते हैं। और यह श्रीमद् भागवतम निर्मत्सर लोगों के लिए, निर्मत्सर पुरुषों के धर्म का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोचित कई सवत्त परमो निर्मत्सराणाम कथा। और अब बता रहे हैं कि प्रायश्चित यदि खूब किया जाए बड़ा बड़ा, तब भी किसी पापी की पूर्ण शुद्धि नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि प्रायश्चितानि कीर्णानि नारायण पराग मुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभ निवासगः। जैसे शराब का घड़ा है, शराब का घड़ा पैक है, शराब के घड़े को शुद्ध करने के लिए कोई ले जाए गंगा जी में 1000 बरस रखे, जमुना जी में रखे, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में, तो बड़ी बड़ी नदियां मिल करके भी, बहुत पुण्यवती नदियां मिल करके भी उस शराब के घड़े को शुद्ध नहीं कर सकती है। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति नारायण परायण मुखम है, नारायण का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, तो बड़े बड़े प्रायश्चित भी उसको शुद्ध नहीं कर पाते। इतना बड़ा काम करेगी भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हुआ तो शुद्ध नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े साधन भी शुद्ध नहीं कर पाते हैं। इसी उदाहरण को दिया गया है, गंगा जी, जमुना जी, सब नदियां मिल करके भी शराब के घड़े को शुद्ध नहीं कर पाते। सारा तीर्थवास, उपवास, जो भी प्रायश्चित है, एक आदमी कर ले सप्ताह ब्रह्मचर्य सब कुछ भी, लेकिन वो शुद्ध नहीं हो पाएगा यदि भगवान का भक्त नहीं है। तो नारायण परांगमुख, नारायण से विमुख है तो शुद्ध नहीं हो सकता। तो शुद्धि चाहिए तो भगवान का भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने का मतलब है भक्ति करना, वो तो रजिस्टर्ड नहीं, भक्ति करने पर तब तो भक्त कहा जाता है। नाम जप करे, भागवत पढ़े, भगवान का दर्शन करे। भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है हृदय में एक अनुकूल भावना, भगवान के सेवा की भावना, उनके नाम के प्रति श्रद्धा, गुण के प्रति, लीला के प्रति, श्री विग्रह के प्रति जो एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसको भक्ति कहते हैं। तो जो इस प्रकार के भक्त हैं उनको ही प्रायश्चित शुद्ध कर पाते हैं, नहीं तो प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी भक्ति की महिमा बता रहे हैं। अब अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि थोड़ी भी कृष्ण भक्ति की जाए तो वह अपनी स्वप्न में भी जमराज को और जमराज के पुलिस को, दूत को नहीं देखता है, सपने में। बहुत सुंदर श्लोक में कह रहे हैं, सक्रिय मन कृष्ण पदारविंद निवेशितं तद् गुणराजि जयरिह न ते यमं पाश भृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यं ते कीर्ण निष्कृतः। जिन्होंने अपने मन को एक बार भी कृष्ण पदारविंद, एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में लगाया है, एक बार और एक सेकंड के लिए भी, एक बार प्रकृत का अर्थ है एक बार, प्रकृत मन कृष्ण पदारविंदय निवेशितं तद् गुणराजि जयरिह। जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणारविंद में, मतलब श्री कृष्ण में अपने मन को एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी लगाया है, मतलब उनके विषय में सोचा है, उनके रूप के विषय में, वे स्वप्न में भी जमराज को और जमराज के दूतों को नहीं देखते। मतलब जमराज के दूत उनके पास कभी नहीं जा सकते। एक बार भी तो केवल मन को जिन्होंने लगाया कृष्ण में, और वो भी सब गुणरा की जय, कृष्ण के गुण पर लुब्ध होकर के मन लगा, कृष्ण के तत्व को जान करके नहीं, कृष्ण एक सुंदर लड़का है, बस इतने से ही मन चला गया मान लीजिए, और एक बार मन चला गया, एक कृष्ण गोवर्धन धारण किए हैं, एक बार चित्त चला गया, केवल चित्त जिसका चला गया एक बार कृष्ण के चरण में, वो कभी भी जमराज के दूतों को नहीं देखेगा, और न तो जमराज को स्वयं स्वप्ने अपनी स्वप्न में ही शीर्ण निष्कृता उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है इतने से। जब मन से कोई कृष्ण के गुणों को का चिंतन किया या कृष्ण का चिंतन किया, वो जमराज को नहीं देख सकता है, तो जो रोज आंख से कृष्ण को देख रहा है वो कैसे जाएगा जमराज के लोक में बताइए। मन से देखने में और आंख से देखने में बहुत अंतर है, आंख से देखना मन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा महत्व रखता है। ये मंगला आरती में या जैसे तैसे भगवान के सामने खड़े
प्रसाद खा रहा है, प्रणाम कर रहा है, कैसे जमराज उसके पास आ सकते हैं, ये विचारणीय बात है। सुखदेव गोस्वामी कहते सकृत और वो भी स्वप्ने अपी, एक बार भी जिसने चित्त को लगाया भगवान ने, और तब गुणरागी मन, गुणरागी का अर्थ है कि श्री कृष्ण के किसी गुण पर विवश होकर के मन लग गया, कृष्ण को भगवान समझकर नहीं, भगवान समझ करके उनके तत्व को जान करके यदि अपने मन को लगाया वो तो भक्ति हो गई, लेकिन किसी तरह से भाई कृष्ण सुंदर हैं, कृपालु हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, जैसे केवल गुण पर लुप्त होकर के मन अगर चिंतन कर दिया तो स्वप्न में भी जमराज उनके पास नहीं आते हैं, और तो स्वप्न में भी लोग जमराज को देखते नहीं हैं, ऐसा सपना भी वो नहीं देखेंगे कि जमराज उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं, जागृत में तो आने की बात ही दूर। तो ये है भक्ति, थोड़ी भी बहुत महान हो और कर्म और ज्ञान बहुत बड़ा भी हो तब भी बेकार है, उससे शुद्धि नहीं होती, और भक्ति से थोड़ी सी भी शुद्धि हो जाती है। अत्र च उदाहरण तिमं इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुजमयो संवादस्थं निबोधयति। अब इतना सिद्धांत कह करके सुखदेव गोस्वामी इस सिद्धांत का दृष्टांत दे रहे हैं, इस सिद्धांत को पुष्ट करने में महात्मा लोग पुरातन इतिहास कहा करते हैं। उस इतिहास में भगवान विष्णु और जमराज जी के दूतों का संवाद है, परस्पर एक व्यक्ति के विषय में दोनों संवाद किए, अजामिल मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है और उसके लिए दो दल में बहस हो रही है, एक कहता है कि ये धर्मात्मा है और दूसरा दल कह रहा था ये पापी है, लेकिन अंत में उसको परम धर्मात्मा सिद्ध किया गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा था, इससे सिद्ध हुआ कि इस जगत में कहीं धर्म है भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम कल से उस इतिहास को चालू करेंगे, अजामिल के विषय में जमराज और भगवान के दूतों के बीच संवाद हुआ है, बहुत सुंदर संवाद है। हरे कृष्ण जय श्री
कृष्ण। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सक्रीन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागिजयरिहा नते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने पिपश्यन्ति चीर्ण निष्कृतः सक्रीत एक बार भी मनः मन कृष्ण पदारविन्दयोः कृष्ण के चरण कमल में निवेशिता प्रवेशित करा दिया है तद गुणरागी कृष्ण के गुणों पर लुब्ध मन को यही ही जिन लोगों के द्वारा यह इस प्राकृत जगत में ना ना ते वे लोग यमाम यमराज जी को पाश भृतश्च हाथ में पास लेकर के चलने वाले तद भटान उनके दूतों को स्वप्ने अपि स्वप्न में भी पश्यन्ति देखते ही निश्चित चीर्ण निष्कृतः पूर्ण प्रायश्चित कर चुके हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो अंत में वे यह बता रहे हैं कि अति अल्प मात्रा में भी भक्ति का अनुष्ठान किया जाए तो वह जमपाश से मुक्त कर देती है अति अल्प मात्र एक बार भी यहाँ कह रहा एक बार भी जिन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया है निवेशितम वे कभी स्वप्न में भी यमराज को और यमराज के दूतों को नहीं देख सकते क्यों कि चीर्ण निष्कृता चीर्ण का अर्थ होता है संपादित पूरा कर चुके हैं निष्कृता मतलब प्रायश्चित इसे संसार में मनुष्य से निश्चित ही भूल होती है पाप होते हैं लेकिन भूल से भी यदि भगवान का नाम बोल दे भगवान में चित्त को लगा दे एक बार भी तो उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं चीर्ण निष्कृता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है चीर्ण का अर्थ होता है पूर्ण संपादित उन्होंने पूरा प्रपेषित कर लिया इस सिद्धांत को एक इतिहास के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं अत्र च उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोधने अत्र अस्मिन् विषये अर्थात अल्प भक्ति भी महान भय से रक्षा कर देती है स्वल्पमस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् अल्प भक्ति भी महत भय से रक्षा कर देती है इस विषय में महात्मा जन पुरातनम इमम इतिहासम उदाहरन्ति, इस पुरातन इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो उसे उसका व्यवहारिक रूप बताना पड़ता है, थ्योरी बताने के बाद प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो स्वाभाविक प्रश्न होता है कि क्या ऐसी घटना घट चुकी है अतीत में कि बहुत अल्प भक्ति करने वाला व्यक्ति भी, नामाभास का आश्रय लिया हुआ व्यक्ति भी यमपाश से मुक्त हो गया है या कर्म बंधन से मुक्त हो गया है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस विषय में एक नहीं अनेक महत्पुरुष गण इस इतिहास को कहा करते हैं उदाहरन्ति, इसका अर्थ है कि बहुत लोग बोलते हैं। उदाहरती रहता तो इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति ने कहा, किसी एक ने कहा है, लेकिन उदाहरन्ति का अर्थ है बहुत लोग इस बात को कहा करते हैं। मतलब यह विष्णुदूत और जमदूत का संवाद सब जगह चर्चा का विषय है, केवल इस पृथ्वी पर आजकल के मूर्ख लोग इस इतिहास को न पढ़ते हैं न सुनते हैं, लेकिन बाकी जितने बड़े लोग हैं, देवता हैं, वे सब इस इतिहास को कहते सुनते हैं। उदाहरन्ति का अर्थ है उत आहरन्ति, आहरण का अर्थ होता है बोलना, और उत का अर्थ है बहुत अधिक या उच्च स्वर से, बहुत अधिक इसकी चर्चा चलती है बड़े लोगों के समाज में। उदाहरन्ति इमम पुरातनम इतिहास, यह सच्ची घटना, इतिहास का अर्थ होता है जो घटना पूर्व काल में बीत चुकी है। इति का अर्थ होता है पुरातन और हास का अर्थ होता है कथा बात, तो जो संवाद पहले बीत चुका है उसको इतिहास कहते हैं। अच्छा, यह इतिहास कोई ऐसा नहीं चलो 2 वर्ष पहले हुआ था या 10 वर्ष पहले हुआ था या 1000 वर्ष पहले 100 वर्ष पहले, पुरातनम इतिहास बहुत पुरातन इतिहास, और भक्तजन परस्पर मिल करके इस इतिहास की चर्चा किया करते हैं। इस इतिहास में मुख्य विषय क्या है? दूतानम विष्णु जमयो संवाद, विष्णु जमयो दूतानाम, विष्णु के दूतों का और जमराज जी के दूतों का संवाद है, परस्पर कथनोपकथन है। जमराज के दूत बोले हैं तो भगवान के दूत बोले हैं, फिर भगवान के दूतों के बाद जमराज के दूत बोल रहे हैं, इसको संवाद कहते हैं। संवाद का अर्थ होता है किसी विषय को जानने के लिए अनुकूल भाव से जो वाद होता है उसको संवाद कहते हैं, और जब किसी की आइडिया को काटने के लिए कुछ कहा जाता है तो उसको विवाद कहा जाता है, विपरीत वाद, झगड़ा। हम जो कह रहे हैं यदि आपको पसंद नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम दोनों में विवाद हो रहा है, विपरीत वाद। और संवाद का अर्थ होता है सम्यक वाद, वाद माने बात, स्टेटमेंट। एक बार भगवान जमराज के दूतों में और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतों में एक विषय पर संवाद हुआ था, देखने में ऐसा लगेगा कि विवाद हो रहा है लेकिन वो विवाद नहीं था। जमराज के दूतों में जिज्ञासा आ गई जानने की वास्तविक बात क्या है, अजामिल पापी है या नहीं है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दूता नाम यम कृष्ण यो विष्णु यमयो, विष्णु और यम के दूतों का संवाद हुआ था, तम उस संवाद को निबोध नितरां बोध खूब अच्छी तरह से सुनो, बोध प्राप्त करो मैं मुझसे मुझसे सुनो। महाराज परीक्षित तो बैठे हैं सुनने के लिए, कोई असावधान नहीं है, लेकिन फिर भी सुखदेव को सभी सावधान कर रहे हैं। इससे स्पष्ट समझना चाहिए कि बारंबार अटेंशन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल कथा में आ गया है तो सब सुन लेगा, उसको सावधान करना पड़ता है, ठीक से सुनो ठीक से सुनो। महाराज परीक्षित तक को कहा जा रहा है जो कि आमरण अनशन व्रत करके बैठे हैं श्री कृष्ण की लीला सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए, उनको भी कहा जा रहा है कि निबोध नितराम बोध, खूब अच्छे इस तरह से सुनो, सावधानी से सुनो मुझसे। मैं शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अंत में कहा है कि मैं इस कथा को डायरेक्ट अगस्त जी से सुना हूं। अपने पिताजी से तो मैं पढ़ा ही भागवत में, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट अगस्त जी के मुख से सुना हूं। और अगस्त मुनि इस इतिहास को जब कह रहे थे तो भगवान के चरण को छू छू कर कह रहे थे कि ये बिल्कुल सत्य है। जो उनके आश्रम में ड्यूटी है भगवान विष्णु की, उसका चरण कमल छू करके कह रहे थे कि बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना है। तो इस इतिहास को सुनने के लिए हम भी सुखदेव गोस्वामी की तरह आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, इसको नितराम बोध सावधानी से सुनिए। कोई तंद्रा में न जाए, कोई चिंतन न करे अपने घर का दुकान का इधर उधर जब छोड़ा है तो भूल करके इसको सुने सावधानी से। मन बड़ा चंचल है तो चला जाता है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं तो सुनना चाहिए। ले चलिए अपने मन को उस सभा में गंगा जी के तट पर जहाँ सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं। कितने बड़े बड़े महात्मा जुटे हैं, कितना सुंदर विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वो इतिहास इस तरह से चालू करते हैं। कान्य कुब्जे द्विज कश्चि दासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्जे अजामिल नामना कश्चित द्विज आसित। कान्य कुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का कोई एक ब्राह्मण था, रहता था। स्पष्ट है अजामिल नामना कश्चित द्विज। कान्य कुब्ज क्षेत्र को आज कन्नौज कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश में है, कानपुर और फर्रुखाबाद के बीच में है, लगभग यह अभी गंगा जी के किनारे हैं। कान्य कुब्ज को ही कन्नौज कहते हैं और वहां के ब्राह्मण बड़े प्रसिद्ध हैं। ये भी अजामिल भी कन्नौजिया ब्राह्मण था। आज भारत में जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें सबसे आचार विचार वाले कन्नौज के ब्राह्मण माने जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि तीन कन्नौजिया तेरह चूल्हा। तीन कनौजिया ब्राह्मण कहीं जाएंगे तो भोजन बनाने के लिए 13 चूल्हा बनाएंगे अलग अलग। एक चीज बन गया किसी चूल्हे पर तो दूसरा नहीं बनेगा, उसको अलग पकाएंगे। इसका मतलब बहुत शुद्ध रहते हैं तो अजामिल पंडित उसी कान्य कुब्ज क्षेत्र के थे और कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को पहले देश के अनुसार सूचित किया जाता था। सारस्वत ब्राह्मण का अर्थ है सरस्वती नदी के तट पर उनके पूर्वज बसे थे, या दक्षिणात्य ब्राह्मण जो साउथ इंडिया के ब्राह्मण हैं उनको दक्षिणात्य कहते हैं। सरजू पारीण ब्राह्मण होते हैं, सरजू जी के उस पार सरजू पारीण उनको कहते हैं। आज भी हमारे देश में यहाँ इस तरह के ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। तो अजामिल कान्य कुब्ज ब्राह्मण था, द्विज। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, दासी पति द्विज। दासी पति मतलब एक शूद्रा से, एक वेश्या से वो विवाह किया। विवाह क्या किया था, आजकल जैसा लव मैरिज किया था,
कोई शास्त्र विधि से विवाह हुआ नहीं किया। विवाह उसका हुआ था एक बहुत सुंदरी लड़की से जो उच्च कुल में जन्म ली थी ब्राह्मण वंश में, लेकिन उसको छोड़ दिया था। आगे बताएंगे, जमराज के दूत इसके दुर्गुणों को बताएंगे, अभी तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे, इसलिए वो ज्यादा दोष की चर्चा नहीं करते। जमराज के मुखों से ही चर्चा होगी कि अजामिल में क्या क्या दोष था। दासीपति द्विज, एक द्विज था जो दासीपति था। दासी शब्द शूद्रा के लिए है, बहुत नीच स्त्री। और एक तो शूद्रा उसमें भी वेश्या, इसलिए सबसे पहले बता रहे हैं दासी पति अजामिल। अच्छा, अजामिल उसका नाम था, लेकिन फिर भी विद्वान लोग अजामिल का अर्थ करते हैं कि जो अजा से मिल गया हो। अजा माने माया, संस्कृत में अजा को माया कहते हैं, माया में जो घुल मिल गया है उसको अजामिल कहते हैं। लेकिन यह अर्थ केवल मजाक के लिए कहा जाता है, वास्तव में उसका नाम अजामिल था। नामना नष्ट सदाचारो, उसका सदाचार नष्ट हो गया था। सदाचार का अर्थ होता है सताम आचार सदाचार। पहले के सज्जनों ने, बड़े लोगों ने जो काम किया है, जैसा आचरण किया है, उसको सदाचार कहते हैं। बड़े लोग जो कर चुके हैं परंपरा से, उसको सदाचार कहते हैं। लेकिन इसका सदाचार नष्ट नष्ट हो गया था, एक भी नियम का पालन नहीं करता था। उल्टे दास्या संसर्ग दूषित, उस दासी के संसर्ग में आने के कारण दूषित हो गया था, बहुत अशुद्ध हो गया था। सदाचार तो नष्ट हो ही गया था, जो ब्राह्मणोचित धर्म था, कुल परंपरा थी, वो तो नष्ट हो ही गई थी, और उल्टे और दोष आ गए थे। दूषित, दूषित का अर्थ होता है जिसमें दोष आ गया है, कंटेमिनेटेड। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दास्या संसर्ग दूषित। इसे यह सिद्ध होता है कि यह ब्राह्मण पहले शुद्ध था, लेकिन जब से दासी के साथ हुआ तब से अशुद्ध होते होते 100% अशुद्ध हो गया, दूषित। इसके दोषों का वर्णन करते हुए कहते हैं, काम क्या करता था परिवार चलाने के लिए, बंद्यक्षही कैतवैश्चौर्जे गर्हिता वृत्तिमास्थितः बिभ्रत कुटुंब मसुचीर जातया माश देहिनः। चार काम था इसका परिवार पालन के लिए, बंदी, अक्ष, जुआ और चोरी, चार काम इसके थे। ब्राह्मण इसका परिवार बहुत बड़ा था, परिवार को पोषने के लिए चार काम किया करता था। बंदी, बंदी का अर्थ है किसी का अपहरण कर लेता था और कुछ दिन अपने कस्टडी में रखता था और उसके स्वजनों से पैसा लेकर के तब छोड़ता था, पहला इसका रोजगार ये था। ब्राह्मण था, किडनैप करता था, अपहरण करता था और पनाह लेकर छोड़ता था, मतलब कुछ पैसा लेकर के छोड़ता था। ये सब अपहरण आदि की बातें आज की ही नहीं है, ये अनादि काल से चल रही है। अब कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन पहले था ये कम था। इस तरह से ये पैसा कमाता था, अक्षय ही और जुआ से। अक्षय का अर्थ होता है जुआ, जुआ खेलने में बड़ा एक्सपर्ट था और उससे काफी धन कमाया। अपहरण से, जुआ से और कैतव का अर्थ धूर्तता से। किसी से मांगता था कि आप हमको 2-4 लाख दे दीजिए, हम बाद में आपका इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन मूल भी नहीं देता था। ऐसे से बहुत लोगों को फंसाया, दुनिया तो बहुत लंबी है। कभी किसी को, इसको कैतव कहते, धूर्तता। और सबसे काम नहीं चलता था तो चौरजय, चोरी करता था। इस प्रकार से गर्हिताम वृत्ति मासित, बहुत निंदनीय आजीविका अपनाया। जीना चाहिए वास्तव में संसार में, व्यापार करके, सर्विस करके या खेती करके जो भी, लेकिन निंदनीय वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। धन कमाने का मनुष्य को अधिकार है व्यापार द्वारा जैसे तैसे, लेकिन अभी चार जीविका के जो साधन यहाँ बताएगा, जी का अपहरण करके, जुआ खेल करके और झूठ बोलकर धूर्तता से और अंत में चोरी से, चार साधन। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गर्हिता वृत्ति आस्थित, बहुत निंदनीय कंडम वृत्ति में जीविका के साधन में वो आस्थित टिका हुआ था, लगा हुआ था। अच्छा, और ये धन क्या करता था, धन कमा करके क्या करता था, कुटुंबम विभ्रत, अपने कुटुंब का पालन करता था। ऐसा भी होता है कि चोरी किया है, सब किया है, तो मंदिर के द्वारा उस धन के द्वारा दूसरे का उपकार करता है, तभी चलो कुछ क्षमा थे कि ले लेकर के धनियों का धन और गरीबों की सेवा कर रहा है, ऐसा भी नहीं, केवल कुटुंब का पालन।